अब आगे आयत नंबर 5 से लेकर सबक के आखिर बल्कि अगली और कई आयात तक ग़ज़वा बदर का तज़किरा होगा। अल्लाह सुबहान ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, कमा अखरजक रब्बुक मिन बैतिक बिलहक्कि, जिस तरह के निकाला आपको आपके रब ने आपके घर से हक के साथ। लेकिन और क्या हो रहा था, वह इन फरीकम मिनल मुमिनीन लकारिहून, और एक जमात अहले ईमान की खुश न थी या नापसंद करने वाली थी। क्या करते थे वो, युजादिलू नकफिल हक की, वो आपसे झगड़ा करते थे हक के मामले में। कब करते थे, बातमा तबयनल, इसके बाद के उनके लिए वाजे हो गया। क्या वाजे हो गया, कि आप अल्लाह के नबी हैं और मदद मोमिनों ही के साथ होती है। क्या कैफियत थी उनकी, का अन्नमा युसाकून इलल मौत, गोया के वो हांके जा रहे हैं मौत की तरफ। वहुम यंजुरून, और वो आंखों देखते हैं, यानी आंखों देखे किसी का अपनी मौत की तरफ जाना, किसी के दिल में जो तब्दीली लाता है, जो हालत होती है खौफ की, वही हालत कुछ लोगों की थी। यहाँ से अब अगली कई आयात तक ग़ज़वा बदर का तज़किरा होगा। सूरत के आगाज़ में एक बात की गई थी, और वो क्या थी कि सूरत अल अनफाल जो है, इसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लम के मदनी दौर के आगाज़ में ही पेश आने वाली जंग, जिसको ग़ज़वा बदर के नाम से तारीख जानती है, उसका तज़किरा है। कुछ मज़ीद बातें जो इंशाल्लाह अगले कई रुकू तक आपकी मदद करेंगी, थोड़ा सा आपके सामने रखूंगी, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला हम आयात के साथ चलते जाएंगे। तो आप फील करेंगे कि सिर्फ आयात का तर्जमा ही आपको बात को समझने में मददगार होगा। तो हम देख रहे हैं सूरत अनफाल, और बात हो चुकी कि अनफाल नफिल की जमा है, और नफिल इनफाल माल गनीमत को कहते हैं। और इस लफ्ज़ से पता चलता है कि एक ईमान वाला जंग जो करता है वो किसी माल के लिए नहीं करता। किसी भी ईमान वाले का कोई काम जो अल्लाह के लिए करे वो माल के लिए नहीं होता, लेकिन अल्लाह के वादे हैं कि जब कोई सच्चे दिल से अल्लाह के रास्ते में निकलता है तो बिन मांगे उसको दुनिया का बहुत सारा माल और असबाब दे देता है। अपनों से ना भी दिलवाए तो दुश्मनों से दिलवा देता है। और ये दीन की एक रूह है, जिस बंदे ने अपने अंदर ये रूह पैदा कर ली वो कभी भी तंगदस्त नहीं होगा, कभी भी दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। सूरत अनफाल से पहले हमने दो सूरतें देखी, सूरत अल आराफ और सूरत अल अनाम। पीछे बात हो चुकी है कि ये दोनों सूरतें भी जोड़ा हैं। सूरत अल अनाम के ज़रिए से तस्कीर भी आला इल्लाही थी, अल्लाह की नेमतों के ज़रिए अरबों को बनी इस्माइल को नसीहत की गई, संभल जाओ, देखो अल्लाह ने तुम्हें कितना कुछ दिया है। ना समझे तो सूरत अल आराफ में तस्कीर भी अय्याम इल्लाह, यानी पिछली कौमों के हालात पे रोशनी डालकर बताया गया कि पिछली कौमें अगर अपने नबी की बात ना मानकर तबाह कर दी गईं तो तुम भी नहीं बचोगे। तो गोया कि आप कह सकते हैं कि इन दो सूरतों में अरब, जिनको बनी इस्माइल भी कहेंगे, इनके ऊपर हुज्जत तमाम हो गई, इसके बावजूद वो नहीं माने। और इंसानों की अजीब कहानी है कि दूसरों के हालात से फ़ायदा नहीं लेता। चुनांचे अब अगली दो सूरतें, सूरत अल अनफाल और सूरत अल तौबा में बताया ये जा रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का वालों ने या बनी इस्माइल ने क्या किया। ज़माने नज़ूल देखें इस सूरत का, तो सूरत बकरा और सूरत मोहम्मद के बाद नाजिल हुई, और कुरान पाक की तरतीब को देख लीजिए। सूरत बकरा बिल्कुल इब्तदाई सूरत है, और सूरत मोहम्मद 26वें पारे में आती है, जो कि कुरान पाक की इंतहा है। इन दो के बीच में सूरत अल अनफाल में अल्लाह सुबहान ताला ने ग़ज़वा बदर, जो कि इस्लाम के नाम पे लड़ी जाने वाली पहली जंग थी, उसका तज़किरा किया। और इससे अगली सूरत, सूरत तौबा जो हम करेंगे इंशाल्लाह इसके बाद, उसमें ग़ज़वा तबूक का तज़किरा है। ये एक रब बनता है सूरतों में कि जो मिशन ग़ज़वा बदर के मौके पे शुरू हुआ था वो ग़ज़वा तबूक तक नबी सल्लम की ज़िंदगी में ही इंतहा पे पहुंच गया। एक तरफ सिर्फ मक्का वालों और मदीना वालों ही से जंगे थी, लेकिन तबूक के मौके पे पता चल गया कि इस्लाम का ये बढ़ता हुआ सैलाब अब किसी के रोके से रुकेगा नहीं, और हिरकल और रोमियों तक ये बात पहुंच गई। आप कह सकते हैं कि उस वक्त के वेस्टर्न कंट्रीज तक इस्लाम का पैगाम जाना शुरू हो गया। सूरत अनफाल जो है ये मुसलसल एक खुतबे की सूरत में नाजिल हुई। बास कहते हैं कि दो या तीन स्ट्रेच में नाजिल हुई, लेकिन जब हम इसका मजमून देखते हैं ना तो पता चलता है कि इसमें कहीं झोल नहीं है, और आयतें बताती हैं कि ये बिल्कुल एक ही स्ट्रेच में, यानी ऐसा लग रहा है कि ये पूरी सूरत इकट्ठी ही पढ़नी चाहिए। और वजह इसकी ये भी है एक साथ होने में कि इसमें चूंकि वाक्यात हैं, तस्करे हैं, तो कहानी को बहुत सारी किस्तों में जब कर देते हैं तो फिर उससे मज़ा नहीं आता। यहाँ एक छोटी सी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पिछले अंबिया की अकवाम के तनाजर में भी करूँगी। सूरत आराफ पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छी तरह समझ गए कि पिछली कौमों के साथ अल्लाह ताला की क्या सुन्नत थी, कि जब लोगों की अक्सरियत ने नबी को झुटलाया, चंद लोग ईमान वाले थे, अल्लाह ने उन चंद लोगों को नबियों के साथ हिजरत का हुक्म दिया, वो निकल गए, पीछे क्या हुआ, पूरी कौम पे अजाब आ गया और ख़त्म हो गया। इतनी बात वाज़ है, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लम की उम्मत के साथ मामला मुख्तलिफ हुआ। वजह क्या थी, यानी आप देखिए कि पिछली कौमें जो थीं उनमें झुटलाने वाले ज़्यादा थे, मानने वाले थोड़े थे, तो आसान मामला क्या लगा, जो अच्छी चीज़ है साफ साफ वो चुन के रख लो और बाकियों को फेंक दो या उनको जला दो गिला दो। ऐसे जैसे आप आलू बुखारे की पेटी लेके आते हैं घर में, आप देखते हैं ओहो ये क्या हुआ, ये तो सारी गले हुए, हाँ चंद दाने अच्छे लग रहे हैं, तो क्या करेंगे, गले हुए फेंकेंगे नहीं, साफ साफ उठा लेंगे और बाकी पूरी डंप कर देंगे। ये था मामला पिछली कौमों का, क्योंकि वो ज्यादा थे, मानने वाले थोड़े थे, नंबर एक वजह। इसके बरक्स साथ ही देखते जाएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस कौम का मामला था, जिसको आप मक्का वाले कह सकते हैं, मुशरिकीन कहते हैं, उनके अंदर खैर वाले लोग ज्यादा थे। या आज हम कहते हैं ना मुशरिकीन मक्का, मुशरिकीन मक्का, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। जब आप फतेह मक्का के बाद लोगों को देखते हैं, उंगलियों पे गिने हुए लोग सिर्फ नबी सल्लम के दुश्मन थे, ठीक है, और उनमें से भी बड़ों बड़ों को शुरू में मार दिया गया। तो लिहाजा नबी सल्लम के साथ जो कौम थी उसमें ज्यादा खैर पे थे, थोड़े खराब थे, एक वजह। और दूसरी वजह भी अब साथ ही ले लें पहले, कि पिछली कौमों के मामले में अल्लाह का असूल ही ये था कि इस नबी और इस कौम के जाने के बाद दूसरा नबी आ जाएगा, तो लिहाजा अगर ये सारी की सारी नस्ल खत्म भी कर दी गई तो अगले नबी के जरिए से फिर अल्लाह का पैगाम आम हो जाएगा। लेकिन इसके बरक्स तकाबुल पे आ जाइए, अल्लाह के नबी सल्लम आखिरी नबी थे, पिछली कौमें तो यक लख तबाह करके उनको नीस्तो नाबूद कर दिया, गोया कि वो बसते ही नहीं थे ज़मीन में, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि आखिरी नबी थे, आपके ज़रिए से पैगाम क़यामत तक के लोगों को पहुँचना था। अगर आपकी कौम के साथ भी वही मामला कर दिया जाता जो पिछली कौमों के साथ किया जाता, तो फिर बड़ी की बड़ी नस्लें ख़त्म हो जाती, जिन नस्लों से बाद में इस्लाम फूटना था। ये भी बात क्लियर हो गई ना। अब हुआ क्या, अब देखते हैं कि पिछली कौमें तो सेम एक अजाब आया ख़त्म, तूफान नूह आया, कौमें नूह ख़त्म, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकाबिल कौम जो थी इस पर अजाब दो किस्तों में आया, सीरियल वाइज, नंबर एक किस्त, नंबर दो, ठीक है। पहली किस्त इसकी जो थी ना वो चुकाई गई मक्का में से 13 साल के जुल्म सितम सहने के बाद तकरीबन 140 के करीब लोग अल्लाह के नबी के साथ मक्का से मदीना हिजरत करके जा चुके थे। और ऐसे दौर में जबकि मुसलमानों ने सोचा कि हम मदीना में ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन सिर्फ एक साल गुजरा, आप कह सकते हैं कि 13 साल मक्का के और एक साल मदीना का जब पूरा हुआ तो अजाब की पहली किस्त नाजिल हुई, कहाँ, बदर की सूरत में। इस वक्त जो जंग हम पढ़ने वाले हैं ना, ये गज़वे बदर है, ये अजाब की पहली झलकी थी मक्का वालों पे। اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے بڑے بڑے سرداروں کو مکہ سے نکالا، جس میں ابو جہل بھی تھا اور باقی لوگ بھی تھے، اور جس طرح کہ فرعون اپنے قوم سے نکل کے باہر آیا تو ڈبو دیا اس کو، اسی طرح پہلی قسط میں ان کے 70 لوگ مارے گئے، کفر کے سر کچلے گئے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیہ، اور ان کو مارا گیا، مکہ میں نہیں مارے گئے، کیوں؟ کہ مکہ اللہ کا حرم تھا اور وہاں پہ عذاب نہیں آ سکتے، اس لیے اللہ نے ان کو باہر نکالا. آپ آگے آیتوں میں پڑھیں گے کہ کیسے دن دناتے ہوئے آئے تھے، عیاشیاں کرتے ہوئے آئے تھے، لیکن اصل میں ان کی موت پکار رہی تھی. تو غزوہ بدر میں ان کا زور ٹوٹ گیا، وہ سر، وہ برین، وہ دماغ جو مسلمانوں کے خلاف پلاننگز کرتے تھے نا، سب ختم، بدر کے کنویں میں ڈمپ کر دیا. جیسے فرعون کو دریا میں ڈبویا گیا، ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا. یہ تھی پہلی قسط، اس کا تذکرہ ہے سورۃ الانفال میں. چلیے اگلی قسط. دوسری قسط جو ان لوگوں کے ساتھ چکائی گئی تھی، یہ 9 ہجری میں فتح مکہ کے 1 سال بعد حرم کی حدود سے نکلنے کے اعلان کے ساتھ ہوئی. آگے پڑھیں گے جب سورۃ توبہ تو آپ کو اس کی تفصیلات ملیں گی. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو چکا تھا، پھر بھی اللہ کے نبی کے ذریعے سے ان لوگوں کو وہیں رہنے کی اجازت تھی، لیکن 1 سال کے بعد پھر برات من اللہ ہی، سورۃ توبہ کی پہلی آیتوں کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے مشرکین کو ایک پیغام دے دیا کہ صرف 4 مہینوں کی مہلت لے لو اور دین دیٹس اٹ، اب تم قیامت تک حرم کی حدود میں قدم نہیں رکھ سکو گے. تو گویا کہ کمپلیٹ کر دیا اللہ نے، آپ کہہ سکتے کہ سالانہ کیا پوری صفائی ہو گئی. اور اس دوسری قسط کا تذکرہ سورۃ توبہ میں، دونوں کا ربط مل گیا، ایک میں ایک چیز ہے، دوسری کا تذکرہ دوسری میں. اور غزوہ بدر جو تھا نا، بس آپ یہ سمجھ لیں کہ بدر کی لڑائی سے اسلام کی دعوت اپنے آخری اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی. انگلش میں بدر کو کہتے ہیں کہ بگننگ آف دا اینڈ، یعنی زوال کا آغاز ہو چکا تھا مکہ والوں کے. 13 سال کا صبر اب آخری حد تک پہنچ چکا تھا، اسلام ایک سپر پاور بن چکا تھا، مدینہ پہلی اسلامی ریاست بن چکی تھی، مسلمانوں کے لیے حالات نسبتاً سازگار تھے، جو بھی اسلام میں داخل ہوتا پورے کا پورا ہوتا، اور ہر طرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والی کیفیت چھا گئی. اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین ساتھی ملے، جنہوں نے آپ کے ساتھ اسلام کو نافذ کرنے میں مدد کی. لفظ نافذ پہ غور کیجئے گا، نفاذ، اپلائی کرنا. ایک ہوتا ہے کوئی رول بنانا، ایک بندہ بیٹھ کے بنا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، 4 دیواری میں بیٹھے، رات کو بیٹھے، دن کو بیٹھے، کوئی مشکل نہیں ہوتا. اسی طرح جب دین کی تبلیغ کی جاتی ہے نا، تو وہ بھی ایک شخص کر سکتا ہے، اور ہر نبی نے اپنے دور میں تبلیغ کی، لیکن اس تبلیغ کے نتیجے میں عملی طور پہ جو اظہار ہوتا ہے اسلام کا، اس کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال تبلیغ کی، لوگوں کو دعوت دی، پیکج دیا، 10 کمانڈمنٹس کے ذریعے سے بتایا گیا کہ جس ملک میں، جس کمیونٹی میں یہ 10 احکامات آ جائیں گے عمل میں، وہاں امن چین ہوگا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قسمت کیا تھی کہ ان کو ساتھی اچھے نہیں ملے، انہوں نے انکار کر دیا، فَزْغَبَنْ تَوَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم جاؤ تم لڑو. اور یاد رکھیے کہ دین کی تبلیغ اور دین کے نفاذ کے بیچ میں جنگ کا مرحلہ ہوتا ہے. اگر آپ اپنے مائنڈ میں ایک میپ بنا رہے ہیں نا، دین کی تبلیغ سب کر رہے ہیں آج کے دور میں، مسلمان، عالم، مفتی، مبلغ، دین، تبلیغ، قرآن، سنت، 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 کیوں نہیں آ رہا دنیا میں؟ چلے پاکستان میں کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ نافذ نہیں ہو رہا. نافذ کرنا اور تبلیغ کرنا یہ 2 مختلف چیزیں ہوتی ہیں. کسی کا دین، جیسے ہم یہاں بیٹھ کے قرآن سیکھ رہے ہیں، ایک استاد آپ کو سکھاتا ہے، آپ کو بتاتا ہے قرآن یہ کہتا ہے، اس طرح جیو، ایسے کرو، لیکن آپ اپنی ذات پہ، اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں خود نافذ کر رہے ہیں، کوئی استاد جا کے نافذ نہیں کرتا. ये आपकी छोटी मिसाल से इंशाल्लाह ये बड़ी मिसाल समझ आएगी। यहां आप कोई बात सुन के जाते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वक्त के रिवाज के खिलाफ। ये बात हो गई आपकी पहली, तबलीग हो गई। अब आप कहते नहीं मुझे अपने इस 5-6 फुट के जिस्म पे इस बात को नाफिज करना है, या मुझे अपने घर की 4 दीवारी में ये इस्लाम लाना है। छोड़ो बड़े इस्लाम को, मैं छोटा सा एक मुस्लिम मुल्क बना लेती हूँ, एक बहुत बड़ा पाकिस्तान है, मैं अपने घर को पाकिस्तान बनाती हूँ जो हर चीज से पाक होगा। आप जू ही अपने घर में इन सीखी हुई बातों को नाफिज करेंगी ना, तो बीच में जंग होगी, जिहाद होगा, बातें होंगी, ताने मिलेंगे, इल्ज़ाम मिलेंगे, घर वाले भी उंगलियां उठाएंगे। और अगर आप वो रिएक्शन नहीं फेस कर सकती, अगर आप वो बीच की रुकावटों को पार नहीं कर सकती, तो आपके घर और आपकी ज़ात और आपके बच्चे, आपके ख़ानदान में इस्लाम नहीं आ सकता। ये बात वाज़े हो गई ना, बस इसी को बड़ा कर ले। अल्लाह के नबी ने पूरा दीन पहुँचाया, हज़रत मूसा ने भी पहुंचाया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के साथी इस काबिल नहीं थे, उन्होंने साथ नहीं दिया, अच्छी टीम नहीं मिली आप कह सकते हैं उनको। नतीजा क्या हुआ कि यहूद एक उम्मत ना बन सके। सिर्फ तबलीगों से बात नहीं बनेगी, जैसे कि आज के दौर का मसला है, इनफरादी सतह पे बहुत तबलीग है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बड़े बंदे जो उसने चुने हुए हैं, लेकिन दीन नाफिज क्यों नहीं हो रहा कि बीच में जिहाद है। अब आपको जिहाद का सिनेरियो समझ आ गया? जिहाद कहाँ होता है? जहाँ पहले लोगों के जहन तैयार हो चुके होते हैं। इस पे पूरा एक लेक्चर दूंगी इंशाल्लाह किसी मौके पे, तैयारी मेरी आज भी थी लेकिन मैंने सोचा कि फिर आज की तफसीर रह जाएगी। यकीन करें कि सिर्फ उस एक लेक्चर से अगले 20 के अगली 2-4 सदियों तक की प्रिडिक्शन की जा सकती है कि आज के मुसलमान वहाँ कैसे पहुँचेंगे, कैसे दुनिया में इस्लाम आएगा। मैं कह सकती हूँ कि आज से लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा आने तक का जो दौर है ना, उसका एक कंप्लीट पैकेज हमें मिल जाता है कि कैसे अल्लाह के नबी ने मक्का से उठकर मदीना में आकर दावत दी और सिर्फ 10 साल में अरब तो अरब अजम में इस्लाम आ गया, नाफिज किया था। और आपके साथी बहुत अच्छे थे, और उन साथियों की ट्रेनिंग के लिए पीछे 13 साल लगे थे। 13 साल का कोर्स करवाया था अल्लाह के नबी ने, और उसके क्या इंग्रेडिएंट्स थे, जिंदगी रही तो आप ही के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह एक मौके पे। और इतनी स्ट्रांग टीम बन गई, इतना अच्छा नाफिज करने वाले दीन को बन गए कि पहली जंग हुई गजवा बदर जो हम पढ़ने वाले हैं, सफाया कर दिया दुश्मनों का। आधा कुफर तो गजवा बदर में मिट गया था क्योंकि वो बड़े बड़े ब्रेन्स खत्म हो गए थे। तो लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लम के दीन, आपके साथी, आपकी चीज़ें जो थीं वो मौजूद रहीं क़यामत तक के लिए। आज गैर मुस्लिम भी ये बात मानते हैं कि हर कौम के पास एक हीरो होता है, लेकिन मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लम वो तो हीरो, हीरोज़ जिसको आप हीरो कहते हैं, फिल्मों के हीरो वही जो होते हैं लोगों के पसंदीदा। हाँ, वो एक पूरा कोटेशन है मेरे पास लिखा भी हुआ है, इंग्लिश उसका उर्दू तर्जमा भी है, कि उसका टॉपिक है हीरोज, नर्सरी ऑफ हीरोज। नर्सरी तो समझते हैं जहाँ फूल उगते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम ने एक पूरी नर्सरी, एक बाग खिला दिया था हीरोज का। उसका एक फूल अबू बकर, एक उमर, एक उस्मान, एक अली, और हर फूल की एक अलग खुशबू थी। इसके पीछे 13 साल का सबर। पहली चीज लिल्लाहियत, जब लोगों को ये यकीन हो जाता है ना कि हमने अल्लाह के लिए करना है, अल्लाह के लिए जीना है, अल्लाह के लिए मरना है, अल्लाह के लिए देना है, अल्लाह के लिए नहीं देना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतना दिल के अंदर खुबा दिया लफ्ज अल्लाह का नबी सल्लम ने अपने साथियों के, कि उसके बाद जब अमली मैदान में आए तो किसी ने नहीं पूछा कि हमें क्या मिलेगा, हमारा ओहदा, हमारा नाम, हमारी ज़ात, हम कहाँ खड़े होंगे, हमें आप कहाँ प्रोटोकॉल देंगे, हमारा अथॉरिटी क्या है, हमारा नाम तो यहाँ आना चाहिए था, आप वहाँ गया, हमें कहा ये गया, और अमली तौर पे तो हमारी को सुनता ही नहीं। कोई लीडरशिप नहीं, कोई बड़ापन नहीं, कोई सदारत वजारत नहीं, हर बंदा ये कहता था अल्लाह के घर के रास्ते की एक सीढ़ी बन जाओ, जिस सीढ़ी से चढ़ के लोग अल्लाह ताला से जाके मिल जाए, अल्लाह वाला बनना है। और ये जब तक नहीं बात होती किसी गिरोह में, बात नहीं बनती। इसके लिए काम जब कौमें करती हैं, छोटा गिरोह, कल आप भी अगर उठ के काम करेंगे ना इस शहर वालों के लिए, तो आपके लिए भी ये लाजिम शर्त है कि आपके अंदर लिल्लाहियत हो। सिर्फ एक अल्लाह के लिए अल्लाह का पैगाम दूंगी लोगों को, ठीक है कुछ पैसा मिल जाता है नो प्रॉब्लम, कोई खर्चा मिल जाता है नो प्रॉब्लम, कोई किराया मिल जाता है नो प्रॉब्लम, कोई गाड़ी का गैस मिल गया नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरा ये मकसद नहीं है, मेरी मुंतहा ये नहीं है, मुझे एक एक मिनट और एक एक घंटे को नहीं गिनना। फिर आप पैसे के लिए काम करते और पैसे के लिए काम छोड़ते नहीं है। फिर आप ये नहीं सोचते कि पैसा नहीं है तो मेरा दिल ही नहीं लग रहा और मैं तो ये वक्त नहीं कर सकती। और वही शेर जो एक शायर का मुझे इंतहाई खूबसूरत लगता है कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी और गाजी, और एक पूरी रुबाई है। जब तक जिंदगी का ये गोल नहीं बन जाता कि मैंने जो करना है अपने रब के दीन को बुलंद करने के लिए करना है, तब तक बात नहीं बनती। अब यहाँ आप इमेजिन करें कि अल्लाह के नबी सल्लम एक ऐसा गिरोह तैयार कर चुके थे, चोटें भी खाई, इसके रास्ते में सब्र भी होता है, तरबियत के कठिन मराहल, इतने कठिन के कोयलों पर लिटाए गए, रोए नहीं, कोई बात नहीं, पक्के हुए। हम तो कहते ना हाय बिलाल बेचारे कोयलों पे लिटाए गए, वो हाय बिलाल नहीं थे, वो सुभान अल्लाह वो बिलाल थे कि जिनको अल्लाह ने कोयलों पे लिटा के तैयार कर दिया कि कल दीन के रास्ते में जो चुभने आएंगी और जो तकलीफें आएंगी, जो परेशानियां आएंगी ना, उस पर भी जमोगे। उनको कांटों पे खड़ा होना आ गया ताकि बाद में दीन के रास्ते की सौबतों को बर्दाश्त करे। जो बच्चे बड़े लाडों में पलते हैं ना, अक्सर सारी जिंदगी माँ के आंसू पोंछती रहती है, और जो बच्चे बचपन में सख्त जान कर दिए जाते हैं वो फिर ऊंच नीच खुद ही बर्दाश्त कर लेते हैं, वो माँ को नहीं बताते हर वक्त, वो बाप को नहीं याद करते। इसलिए दीन का काम करने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड खुद बंदा उठता है, और सहाबा में ये खूबी थी। अब ये सारी जो मैंने तमहीद आपके सामने रखी और फिर वो सारे तरबियत के मराहल रोक लिए जिससे अल्लाह के नबी ने गुजारा, उसको जहन में रखते हुए गज़वाए बदर का थोड़ा सा तनाजुर समझिए, और इंशाअल्लाह ताला उसकी रोशनी में फिर आपको बाकी सारी बातें भी वाजे हो जाएंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का हिजरत करके आए हुए तकरीबन एक साल हुआ था। ख्याल तो ये था कि यहाँ अब हम अपने आप को मक्का वालों की हदूद से बाहर कर चुके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लम को एक खबर मिली कि अबू सुफियान एक तजारती काफिला लेकर मुल्क शाम से तिजारत का माल लेकर मक्का की तरफ जा रहे हैं, और इस तिजारत में मक्का के तमाम कुरैशी शरीक थे, और कहते हैं कि मक्का का कोई कुरैशी मर्द या औरत बाकी ना था कि जिसका उसमें हिस्सा ना हो। यहाँ एक हल्की सी बात ये भी बता दूं कि जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना में गए थे ना, तो साथ थोड़ी अपने घर ले गए थे, अपनी गाड़ियां, अपनी चीजें, जो भी आज की जुबान में कह लें उनके बिजनेस, सब कुछ वहीं थे। अब मक्का वालों ने उस पर कब्जा कर लिया, मुसलमानों के घर लूट लिए, उनके कारोबार लूट लिए। अब उसी पैसे को जमा करके वो लोग लेके जा रहे थे एक तिजारत का सामान खरीद कर, और कहते हैं कि किसी के पास अगर एक मिसकाल यानी 4.5 माशे सोना भी था ना, तो उसने भी उसमें अपना हिस्सा डाल दिया, और इस काफले का पूरा सरमाया तकरीबन 50,000 दीनार था। दीनार सोने का सिक्का होता है, जो 4.5 माशे का तोला होता है, आप मौजूदा सोने के रेट को हिसाब लगा लें तो, कीमत लगा लें तो तकरीबन आज के क्या, आज से कोई 10-20 साल पहले के भी ये 26 करोड़ रुपए बनते थे रुपीस, और आज इसको मेरा ख्याल है कि अब 50 करोड़ कर ले। इतना सामान था उसके अंदर, जरा इमेजिन करें। और इतने बड़े काफले की हिफाजत के लिए सिर्फ 70 जवान थे, 70 पीपल थे, चांदी भरी हुई, सोना भरा हुआ। अब मुसलमान, जब मुसलमानों को खबर हुई कि ये काफला इधर से गुजरने वाला है, इस काफले में कुरैश के 40 कुरैशी जो सरदार थे उनमें से एक अमर बिन आस भी थे और कुछ और लोग भी थे, मैं नाम सारे नहीं बोलती आपके सामने, सिर्फ आप उस मंजर को सामने लाएं कि क्या मुसलमानों को दिख रहा था। घर छोड़े हुए, माल छोड़ा हुआ, जुदाई भी, आप ही का माल, आप ही के पैसों से कोई तिजारत कर रहे और मदीना से गुजर रहे, और इस तरह का हाल था कि हो सकता है कि मदीना से गुजरते हुए कहीं झड़प हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया, क्या करें, काफला गुजर है, क्या उसका रास्ता रोके या उनकी ताकत को तोड़े या कम अज कम दिफा कर लें कहीं कोई मामला तो ना आ जाए इधर उधर का। खैर, बाकी लोगों ने तो जो कहा सो कहा, सबने जोश में थे, इतने साल का सब्र था, और जिन्होंने मारे खाई होती उनका दिल चाहता जरूर है एक थप्पड़ मारने को कि एक दफा मौका मिले एक थप्पड़ मार के दिखाऊंगा, اس طرح کا صبر تھا، کفو ایدیکم والے حکم پہ عمل کر چکے تھے، ہاتھ رکے ہوئے تھے، یہ تربیت کی تھی، منمانیاں نہیں کر رہے تھے، پسند کے کام نہیں کر رہے تھے. ہوا کیا کہ جب مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، نو پرابلم، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. اور اس طریقے سے مسلمان اس بات کے لیے تیار ہو گئے، جو بھی اٹھ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، اور اٹھنے والے سارے کے سارے مہاجر تھے. اللہ کے نبی پھر بھی پوچھی جا رہے ہیں کیا خیال ہے، کیا خیال ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ ابھی انصار میں سے کوئی نہیں اٹھا، کیونکہ اصل ہوسٹ تو وہ تھے نا. یہ تو ایسے ہی کہ آپ کے ساتھ جانے والے تو تیار ہیں کہیں جانے کے لیے، پکنک پہ جا رہے ہیں، پکنک پہ گھر والا بول ہی نہیں رہا. تو اب آپ سوچیں گے بھائی ہم کیسے جائیں، ہم تو مہمان ہیں. ہیں تو خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ سمجھ کر حضرت مقداد اپنی جگہ سے اٹھے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور بخدا ہم آپ کو وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ کو کہا تھا کہ فضغب انت و ربک فقاتلا، کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور خود ہی لڑ لو، انہا ہنا قائدون، اور ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں جا سکتے. بلکہ اگر آپ برق الغمات، یہ حبشہ کا ایک شہر ہے، آپ برق الغمات تک بھی جائیں گے، یعنی بہت دور بھی جائیں گے، تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. صحابہ کہتے ہیں کہ اس بات کو سن کے تو اللہ کے نبی کا دل کھل گیا، چہرے پہ آپ کی مسکراہٹ ہوئی، اور آپ نے ان کو بہت دعائیں دیں، اور اس طرح سے مسلمان وہاں سے نکلے. اس کی ڈیٹیل زندگی رہی تو سیرت کے کورس میں آپ سنیں گے. آپ کو سیرت جب پڑھائی جائے گی تو وہ بھی آپ کے لیے ایک دوسری ڈسکوری ہوگی، جیسے کہ قرآن پاک ایک ڈسکوری سے کم نہیں ہوتا. بہرحال قصہ مختصر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 313 صحابہ کو لے کر مدینہ سے باہر نکلے. مدر ایک مقام ہے، وہاں ایک کنواں تھا، اسی کی وجہ سے اس علاقے کو بدر کہا جاتا ہے. اب وہاں آ گئے اور وہاں آ کے اپنے پڑاؤ ڈالا. اب اسی چیز کا ذکر ہے جو آیتوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے جائیں گے.